शांति 28 मार्च 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, सायं सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का भी और यूट्यूब लाइव का भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी जो वीडियो को सामने देख रहे हो इसमें एक नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे तुम बहुत लक्की हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिकराहट ही नहीं। दुनिया में कितनी टेंशन है चारों तरफ, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। सिर्फ क्या चिंता है? बाबा की मुरली सुनिए, बाबा की मुरली सुनिए, रात को नींद नहीं आती, सवेरे उसके मुरली सुनिए।
चिंता
एक होता है चिंता दुख वाला, एक होता है चिंता अलर्ट वाला। एक अलर्ट रहते हैं कि हमने ये काम करना है, एक टेंशन ले लेते हैं मुझे ये काम करना है, वो भारी हो जाता है माथा। इसमें माथा भारी नहीं होता, इसमें मजा आता है। जैसे माँ को रहता है बच्चे के लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको टेंशन नहीं होती है, वो उसका चिंतन होता है, वो अलर्टनेस होती है कि मुझे बच्चे के लिए अलर्ट रहना है। बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको उठाना है, कब उसको सुलाना है, वो अटेंशन उसे देना पड़ता है। पानी पिया कि नहीं पिया, हर चीज का अटेंशन उसको, टेंशन नहीं वो अटेंशन होता है। एक होती है टेंशन और एक होती है अटेंशन। अटेंशन मीन्स आत्मा साथ में जुड़ गई है इसलिए अब उसका कोई दुख नहीं होगा, और टेंशन में दुख हो जाएगा। इस बाप को तो फिर भी बहुत चालाक करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा को तो फिर भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि इसने ठेका लिया है बाबा के साथ। ठेका लिया है बाबा के साथ कि मुझे सबको ज्ञान देना है, सबके भाग्य को बनाना है। इस बाप को तो फिर भी बहुत चालाक चलते हैं। प्रश्न, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? किसे कहते हैं सपूत बच्चे? जो बाप का कहना माने, जो बाप का कहना माने, उनकी निशानी क्या होगी? वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहे। सपूत बच्चे कौन होंगे? वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विस एबल होंगे। वो हैं बाबा के सगे बच्चे। सिक्की लगे बच्चे, सपूत बच्चे, जो बाप का पूरा कहना मानते हैं, बाप का परिचय सबको देते हैं और सबका कनेक्शन बाप के साथ जुड़ाते हैं, ऐसे जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं वो हैं सपूत बच्चे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, खुद भी अच्छी रीति पढ़ते हैं फिर औरों को भी अच्छी रीति पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वे औरों को भी खराब करते हैं, वे औरों को भी क्या करते हैं, खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद, ये भी ड्रामा में नूंद है। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की, फिर से उतरेगी गठरी पापा। ओम हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वे तो हद की बात है, वे तो हद की बात है, और ये बेहद के लिए गाया हुआ है, ये बेहद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता नहीं, बेहद का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं, बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वे माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। और ये है बेहद का माँ बाप, वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला। बच्चों में नंबर वार तो होते हैं ना, लौकिक घर में दो चार बच्चे होते हैं तो उन्होंने कितनी संभाल करनी पड़ती, उन्होंने कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो ये है ना, प्रजापिता तो ये है ना। कितने ढेर बच्चों को का ख्याल रहता है, तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना हो तो है ही हजारों फुरने, चालाक दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई की खाल उतार देती है। माया क्या करती है, अच्छी रीति कोई की खाल उतार देती है। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती, चोटी क्यों, अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार चोटी में होता है। और दूसरा आता है नाक पर, है जी,
खाल वाला,
खाल मतलब शरीर की खाल, मतलब इतना इतना उनको जो है ना अपना फंसा लेती है कि उनके सब कुछ खत्म कर देती है। खाल का मतलब पर सारा चमड़ी स्किन जो है ना सारी उतार देती है। जब मर जाता है ना तब उसकी खाल उतार जाती है, जैसे कोई बकरा है या भैंस है या कोई भी है जी, जोर डंगर का मतलब ऊपर का खाल चमड़ा तब उतार जाता है जब मर जाता है। तो इतना माया उनको अपने वश में कर लेती है, अपने अंदर कर लेती है कि उनकी सारी खाल उतार देती है। वो सोच ही नहीं सकते कि कुछ और है, वो बात सुनेंगे भी नहीं, सुनेंगे तो सही, क्योंकि अमर आत्मा है और हर आत्मा को घर जाने से पहले वापस अपनी उस स्टेज को प्राप्त करना है। इसलिए बाबा कहते मैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार मैं करता, जबकि दुनिया वाली गीता में भी ये लाइन लिखी गई कि मैं आकर साधु संतों ऋषियों डाकू चोर जो भी है सबका मैं आकर उद्धार करता हूं। तो आप परमात्मा आकर सबका उद्धार करते हैं, उसके लिए तो सारी आत्माएं उनके बच्चे, मतलब किसी की करे किसकी नहीं करे ऐसा नहीं हो, वो सबका ही उद्धार करते। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले ले। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि ये राजाई स्थापना हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। ये है बहुत ऊंच पढ़ाई, बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता, फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई की स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तो अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बात है। इस समय की समय ही बाप आकर सब बातें समझाते। इस समय भाव कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाए, ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते, तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई की हुई, लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में ये बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, पढ़ाई पढ़ लो। भगवानों वास मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, ये भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वे हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते, कोई तो फिर नालायक नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते, बजाय इसके कि सर्विस करे वो क्या करते हैं डिस सर्विस करते। जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते, प्रेतर बन जाते। प्रेतर कहा जाता है जो बाप से बुद्धि योग तोड़ाए, जो ब्रह्मा कुमारी से भगाए। क्या ब्रह्मा कुमारी अच्छे नहीं है, वो है प्रेत, ऐसे बन जाते। जैसे ब्रह्मा कुमारी खराब, बिल्कुल गलत। ये भी ड्रामा में नींद है, ड्रामा अनुसार ये होने का ही है, होना ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विस एबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनके उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा कभी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुक्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं तो क्या पद मिलेगा, तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं, हमसे तो होशियार बहुत है, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो जरूर जो होशियार हैं उच्च पद भी ये पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं कर सकते, इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, फिर हम उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं, टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना। रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी, पढ़ाई का भी और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहां भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहां अहंकार आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल, क्या करो, योग अक्षर ही निकालो। ये योग होता ही नहीं, योग कौन कहता है योग लगाओ, ये योग शब्द बोले ही नहीं। बाबा फिर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बाबा जो बोल चुके हैं तो वो बोल चुके हैं ना। अब वो मुरली रिपीट होगी तो फिर बाबा कहेंगे योग करो, योग लगाओ, क्योंकि बाबा ने ही कहा है कि योग लगाओ, और बाबा फिर करेक्शन कर रहे हैं। इसलिए आगे और पीछे की मुरली को अपनी बुद्धि में ध्यान में रखना कि बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो, ये बोलो ही मत। अभी दो साल बाद फिर मुरली आ जाएगी, दो ढाई साल बाद फिर रिपीट होगी तो ये मुरली आएगी, क्योंकि इससे पहले तो नहीं आएगी ना। इससे पहले वो भी मुरली आएगी जिसमें लिखा है कि योग लगाओ। अब वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि एक तरफ बाबा कहता है योग मत लगाओ, फिर कहता है बाबा योग लगाओ। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर हैरानी की बात है। बाप कहते हैं ये आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं, और यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशूक बन याद करते रहे, आशिक बन के बाप को याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झाड़मुई झाड़मुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। झाड़मुई झाड़मुई इधर उधर की बातें करना, झगड़ा करना, जिससे ईर्ष्या बदले की भावना क्रोध आए, ऐसी बातों में अपनी बुद्धि को लगाए रहते हैं। झाड़मुई झाड़मुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देवधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो, किसी देवधारी का फोटो अपने पास। फिर हमने ब्रह्मा बाबा का रखा हुआ है ना, आज बाबा एंटी बन के बैठा है ना, इसलिए कह रहा है कि नहीं रखो। फिर मुरली आ जाएगी वो कि ब्रह्मा बाबा को जरूर याद करना, मतलब किसी और देहधारी का नहीं रखो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारा क्या है, नहीं
बड़ा भाई,
बड़ा भाई मॉनिटर, हमारा आदर्श है, हमने उसके कदमों पर चल के चलना, क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, टॉप में वो गया है। उस वो कैसे टॉप में गया है उसकी हम नकल करें तो हम टॉप के आसपास पहुंच जाएंगे। जितना हम बाबा को नकल कर पाएंगे उतना ऊंच पद हम प्राप्त कर सकेंगे। जिसको याद करना है, अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है कि तुम सुदर्शन चक्रधारी कैसे हो। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं। ऐसे बच्चे बहुत, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बाबा को याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है, बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी। साइलेंस और साइंस राशि एक है, साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं हम को शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति की स्थापना तो है ही ब्रह्मांड, शांति की स्थापना तो है ही ब्रह्मांड, जिस ब्रह्म मां तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वो सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल है ना, वो झाड़ वंडरफुल है ना, जिसने सारी आत्माएं परम धाम में सारी आत्माएं दिखाई हैं, सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण, फिर उसके बाद 108 आत्माएं फिर 16,108, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़, फिर ऐसे बढ़ती जाती है ना, झाड़ बढ़ता जाता है। सारे धर्म पिताए गर्दन में दिखाए, फिर हर धर्म पिता की लाइन में उस धर्म को मानने वाली आत्मा, पूरा सारी आत्माएं कैसे कैसे परम धाम में रहती हैं, वो भी झाड़ दिखाया। मनुष्य कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजर सितारा, बहुत छोटा, सोने का तिलक लगाए यहाँ लगाते हैं, बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता। देखो जब मैं मधुबन में गया था एक बार, पहली बार जब, तो दादी गुजार के जो है ना माथे में एक हल्की सी बिंदी लगी, चमकती थी। अब पहला चांस था तो बाबा से मिलने के लिए, तो दादी जो है ना वहां बैठी, वहां शांति स्तंभ है ना जो, वही हमारी, वही आके बैठना। और सारे भाई बहन वही क्लास ऐसी होती थी, वह दादी आ गई है सारे आ जाओ बैठते जाते थे और क्लास चल पड़ती थी। तो वहां पर दादी बैठी और योग शुरू किया, तो मैंने दादी का माथा देखो चौंके, मैंने कहा ये क्या हो गया, आत्मा आ गई क्या, आत्मा चमकती है क्या। फिर मैं दादी के बहुत नजदीक जाके देखा कि एक तो बिंदी लगी हुई है वो चमक रही है, इसमें कोई आत्मा ऐसे नहीं।
आवाज कट जा रहा है भाई जी,
आवाज कट रहा है।
हाँ अब क्या बोले कुछ समझ नहीं आया, अब माथे की दिल्ली देखे उसके बाद कुछ नहीं पड़ रहा, अभी भी इतना ही पड़ रहा है।
शांति स्तंभ पर जब पहली बार मैं बाबा से मिलने गया 1991 में, तो जो शांति स्तंभ है वही सबसे बड़ी जगह होती थी। शाम को दादियां वहां आके बैठ जाती थी शांति स्तंभ पर, और जो जगह बनी हुई थी वहीं पर ही सारे भाई बहन बैठ जाते थे, इतने ही भाई बहन होते थे। और उसमें क्या कि सब क्लास कराते तो योग कराया, तो योग कराया तो दादी के माथे में वो छोटा सा जैसे स्टार लगा हुआ था ना वो चमकता था। मैं कहूँ कि क्या हो गया, क्योंकि उस समय तो नया नए थे ना कि हाँ परमात्मा ऐसे दिखाई देता है क्या। फिर उसके परमात्मा है कि आत्मा है, फिर मैंने दादी के नजदीक जाकर के देखा तो समझ में आया कि स्टार लगा हुआ है, तो जब इधर उधर हिलती है तो लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, कि अंदर से कोई लाइट नहीं आ रही। क्योंकि शुरू शुरू में तो बहुत कुछ जिज्ञासा थी ना कि हर बात को जानने की, तो मुझे वो बात याद आ रही है कि बाबा कह रहे हैं कि बिंदी लगा लेते हैं ना, छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं, छोटा सा तिलक बनाया और यहाँ लगा दिया वो सोने का। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं, जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जान सकते, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकते।
भाई जी
हाँ बोलो,
आप जो बोल रहे हैं डिस्क्रिप दिखा रहे हैं जो मैच नहीं कर रहा भाई जी, मैच करिए।
किसको मैच करूं, स्क्रीन को, स्क्रीन का जो है ना मैच ना होने का कारण होता है नेट, नेटवर्क ढीला हो जाता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे प्रोसेस में करता है, तो हम वहां रुके रहेंगे तो नहीं हो सकता ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एनी डेस्क लगा हुआ है, जो कुछ मेरे इस पर आ रहा है एनी डेस्क दूसरे मोबाइल में जा रहा है, तो दूसरे मोबाइल से आप एनी डेस्क से देख रहे हो, इसलिए तीन मोबाइल लगाए हुए हैं, तो ताकि जो है ना आपको मैं ये दिखा सकूं। नेटवर्क पूरा होता है तो फटाफट चेंज होता जाता है, और नेटवर्क पूरा नहीं होता तो थोड़ा चेंज होने में डिले हो जाता है, होता रहेगा।
समझ रहे हैं।
आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता, कोई दूसरे धर्म वाला इसको जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग के गुरु है ही एक, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते नमन करते हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं, उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? ये है बड़ी गुह्य बात, ये है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़े ये बातें हैं जो खुद मालिक है वो समझाते हैं, जो ज्ञान का मालिक है वो खुद बैठकर हमें समझा रहे हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है, वंदर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कैसे भी हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा में जो नींद है वो तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या बात है भाई, क्या दरकार है? वापस तो आ नहीं सकते, आंसू आया ना पास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवासी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूं। ये राजधानी स्थापन करने के लिए इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वे कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए। कौन गल गए? पांडव, कुत्ता साथ लेकर के गए।
साथ क्यों ले गए?
हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है गपोड़ कहानियों में कि वो शास्त्र लेके गए और बाद में पहचान पकड़ने के लिए कि वो गए थे क्या था। मैं जो समझ पाता हूँ कि कुत्ते की तो बॉडी मिली परंतु उनकी बॉडी नहीं मिली, पांडवों की बॉडी नहीं मिली। अब किसने देखी वो कुत्ते की बॉडी और किसने नहीं देखा पांडवों को? वो पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गलकर मर गए। अब गलकर मर गए, उनका शरीर डेड बॉडी नहीं मिली। ये बात वास्तव में क्या है कि हम आत्माएं अपनी ऊंची चढ़ाई में, पवित्रता की चढ़ाई में, पांडव है ना, चढ़ते चढ़ते हम जब घर जाएंगे तो हमारी डेड बॉडी मिलेगी? किसको मिलेगी हमारी डेड बॉडी? नहीं, किसी को नहीं मिलेगी एडवांस पार्टी, क्या किसी को? हाँ, सारे एक सेकंड में घर जाएंगे, सबके बॉडी साफ हो जाएंगे, कोई किसी की बॉडी किसी को नहीं मिलेगी। चलो वो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, बस जीत पहनी और मर गए। उन्होंने जीत प्राप्त की कौरवों पर और मर गए, इसलिए इसलिए युद्ध किया था क्या? और बेहद क्या बोलते हैं, सारी विधवा और बच्चों और बुद्धों का समाज छोड़ करके गए। 18 अक्षौणी पुरुष जो सेना थी, जो जवान थे, जो शक्ति शक्तिशाली थे, वो सारे मर गए। ये कोई युद्ध करने का तरीका था? तो कोई उसको एनालाइज नहीं करता, कोई उस पर विचार नहीं करता, वरना वो सारा का सारा गपोड़ा 2 मिनट में सामने आ जाता। वे कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गड़ गए। वास्तव में हम जो है ना, अपने अंदर से मतलब जो भी बुराइयां थी, जो भी अवगुण थे, उन सब को खत्म करके परम धाम में चले जाते। हमारा कोई भी कुछ भी किसी को नहीं मिलता। बात ही नहीं ठहरती, ये सब है दंत कथा। दंत कथाएं समझते हैं ना, झूठी कहानी, बनी बनाई कहानी। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। ये कहानियां सारी किसकी हैं? भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। फिर जब तुम वह मार्ग में जाते हो, सीढ़ी नीचे उतरते हो, अभी है अंत समय। बाप कहते हैं कि हम अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो। मुरली मंथन तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देव फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने, और ये मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। दुनिया वालों का जो विराट रूप का चित्र है उसमें क्या दिखाए हैं? देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे बनते हैं, कौन बनाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने सौकार थे, फिर वे सब पैसे कहां गए? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गंवाया। कल की बात है ना, तुमको ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? तुम्हें देवता बना के गए थे, फिर क्या बन गए हो? सोचो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, झरमुई झरमुई को कहा जाता है पर चिंतन। दूसरों के बारे में सोचते रहे, पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठे बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनको उनका ही सर्व करना। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखता वरदान। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति, पावरफुल वृत्ति कब बनेगी? जब हमारा एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव को, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप सामने लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन कर रहना। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने और तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आत्मा तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाते रहो। अगत इशारा, सत्य और सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो, अब अपने भाषणों की रूपरेखा क्या करो? नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत करते करने के लिए करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन और सन शोज फादर, ऐसे सन शोज फादर ही हो तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। कौन नहीं, वो